ధరంగ ప్రక్షాళిత సకల భూతల కళంకా మునివిరుపాసితి తీర్థా సరస్వతీ భరతునోదితం అజ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః పరం గురుభ్యో నమః పరంపరాచారి గురుభ్యో నమః సకల కలుషు విధ్వంసకం శేషాం పరివర్ధకం ధర్మసంగతం భవ్యదీపమన ప్రతిబోధకారకమిదం శాస్త్రం రత్నకరుండశ్రావకాచారణేయం అస్మూలగ్రంథకర్తారీ సర్వజ్ఞదేవాత్తరగ్రంథకర్తారీ గణధరదేవా
భగవాన్ మహావీర్ స్వామికి ఆచార్య పండిత స్వామికి आचार्य समुद्रकर स्वामी जी, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज, ये रत्नकरंदक साहू का जाल आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एक रिश्ता ही धर्म है, क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनकी एक रिश्ता से ही
ये बात तेज है। इनकी एक रिश्ता से ही हमारे जीवन में हम अपनी आत्मपवित्रता को पाते हैं, और आत्मा की पवित्रता ही धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति में जो जो सहायक है वह भी हमने धर्म माना है, और ऐसा जो धर्म है वो एक बार जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है। क्या क्या चीजें उसके जीवन में आती हैं तो उसके जीवन से मूर्ताएं चली जाती हैं, उसके जीवन से अहंकार चला जाता है, और उसके जीवन में आठ गुण आपो आप प्रकट हो जाते हैं। आठ गुण उसके अपने स्वयं के हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वे सम्यक दर्शन के होते ही साथ अपने आप भीतर से प्रकट हो जाते हैं। मिथ्या उन्हें ढके रहता है, इतना ही अपने को समझने का है। कई बार ये प्रश्न आता है, व्याख्या करने वाला ऐसी व्याख्या भी करता है कि आठ गुण आ जाने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उसे सम्यक दर्शन हो ही, ये आठ गुण को मिथ्या दृष्टि के भी हो सकते हैं। ऐसी व्याख्या करने वाला व्याख्या कर सकता है, ये एक पहलू है। उसकी अपेक्षा ये है कि कोई व्यक्ति इन आठ गुणों को बाहर से प्राप्त कर ले तो इतने प्राप्त करने से उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे, और शायद लगता है कि ऐसा कहने वाले का इस तरफ भी ध्यान हो कि पता नहीं ये आठ गुण अपने लिए बात कहीं रह गई
स्वतंत्रता दृष्टि में से ऐलान लगा,
ऐसा भी उसके भीतर भाव हो सकता है। उस व्याख्याकार के भीतर तो ऐसी व्याख्या जल्दी की जाए कि आठ गुणों के आ जाने पर भी कोई बड़ी नहीं है सम्यक दर्शन होगी, तो उस बात को अपन अच्छे श्रोता की तरह ऐसा विचार करके सुन लेंगे कि ठीक तो है, एक मिथ्या दृष्टि के भीतर भी ये आठ गुण हो सकते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसके भीतर तो ये आठ गुण होना ही चाहिए, उसके भीतर तो होंगे ही होंगे। मिथ्या दृष्टि के भीतर हो या नहीं होने इसका क्या करना, हम अपने सम्यक दर्शन की तरफ देखेंगे, तो अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे भीतर ये आठ बातें आनी ही चाहिए, आती नहीं है। हमारी दृष्टि निर्मल होती है तो फिर हम जिसके प्रति श्रद्धालु हैं, सच्चे योग गुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो फिर उनके कहे गए वचनों में हम कभी भी संदेह नहीं करेंगे। जिन वचन में संका न धार, जिनेन्द्र भगवान के कहे गए वचनों में हम जरा भी संदेह नहीं करेंगे। जिज्ञासा है ना, अलग बात है, हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए जब हम कोई शंका समाधान करते हैं वो शंका समाधान अलग है, और हम संदेह कर गए वो बिल्कुल अलग है। इसलिए निशंकित होने का अर्थ है संदेह से रहित और निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। जब जीवन में श्रद्धा आती है तो व्यक्ति बहुत निश्चिंत हो जाता है। हमने कई उदाहरण से ये बात समझी है, अपने जीवन में भी ये देखा है कि अगर अपना किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास हो तो अपन उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाते कि भैया इनसे अपनों का कोई अहित नहीं होने वाला, जब भी होगा इनसे हमारा कुछ ही होगा, ये तो हमारे विश्वस्त व्यक्ति है। जब हम संसार में किसी सामान्य व्यक्ति पर विश्वास करके और निश्चिंत हो जाते हैं तो मोक्ष मार्ग में भी कहते हैं कि जिसे सच्चे देव विश्वास के प्रति श्रद्धा है वो संसार के सुख दुख के प्रति निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है और साथ में निर्भय भी हो जाता है। ये दोनों चीजें फिर कहते हैं धार ब्रश भव सुख लांछा भाने, उसके जीवन में धर्म इतने गहराई में आ जाता है कि फिर उसे भाव के सुखों की आकांक्षा नहीं रहती। सुखे नाश था, वो संसार के सुखों को भोगता तो है लेकिन उन सुखों को वास्तव में सुख नहीं मानता है। वेदना का प्रतिकार होने पर जो थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो असाता और पाता इन दोनों के उदय के सुख और दुख का जो वर्णन होता है वो कर्म के अधीन है। ऐसा मान करके भव सुख में उसकी आस्था नहीं है। आकांक्षा का तो ऐसा दिया कि सराग सम्यक दृष्टि और वितराग सम्यक दृष्टि अलग अलग भूमिका के हिसाब से अगर हम विभाजन करें तो दो प्रकार से सम्यक दर्शन देखने में आता है, एक सराग अवस्था में और एक वितराग अवस्था में। सराग अवस्था में सामान्य गृहस्थ इतनी ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच सकता कि वो सभी आकांक्षाएं छोड़ देवे, कहते नहीं, लेकिन वो आकांक्षाएं नगर में छोड़े पर उन संसार के सुखों को सच्चा सुख नहीं मानता। इतना तो उसके भीतर रहता कि ठीक है जो मिले हैं सो ठीक, ले लिया पांच इंद्रियों के विषय मिलेंगे तो ठीक, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषयों के लिए वो अपना धर्म छोड़कर के दौड़ में शामिल नहीं होता, बस इतना ही समझ के चलना। संसार की दौड़ में वो अपने धर्म को छोड़कर के नहीं भटता, तो संसार के सुख मिल जाएंगे ऐसा नहीं, संसार के सुख मिले तो मिले, हमारे धर्म करते हुए मिले तो मिले, हमें क्या करें। हमारा मुख्य ध्येय तो है हमारा अपना आत्मधर्म, उस धर्म की प्राप्ति में अगर बीच में संसार के सुख मिलते हैं तो बिना आस्था के उनको स्वीकार कर लेता है, करना पड़ता है उसके लिए, उसकी दृष्टि में तो वो सुख वास्तविक नहीं है। अपन मानते क्या मानते हैं, मेरे न चाह सकी और ईक रत्नत्र मानते भी हैं भगवान से, तो क्या मानते कि मेरे न चाह सकी और जो तुम मिल गए हो तो प्रीति मिल गए, मगर हमारे चीज की चाह नहीं है, धन संपत्ति सब कुछ मिली है, इस सावत के लिए सम्य दृष्टि में तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल विप्रकाल पायु दरिद्रकाम
से न भगवंती ना प्रगति का, इस सम्य दृष्टि तो दुष्पुर में उत्पन्न में होगा दरिद्र होगा ही नहीं, वो तो पहले से ठाक पाठ पूरा उसको प्राप्त हो जाएगा, बैधा प्राप्त होगा, लेकिन उस बैधा में उसकी आस्था नहीं है, सवाल भी है। बैधा पाने के लिए जो दौर हुआ थे उसकी नहीं है। जो लोग अपने वर्तमान के पाप के पुरुषार्थ से पैसा कमा ले दो महीने को सम्यक दृष्टि में मान लिए होंगे, ऐसा कौन करके कि भाई मैं अगर तो सम्यक दृष्टि हो गई, वो तो हमने प्रयास किया है पाप करके उसको अर्जित किया है, उसकी पैसा नहीं है यहां पर, क्योंकि उसको तो अपने आप जो बैठा मिल जाता है उस बैठा को भी जो अपना नहीं मानता है पर मान करके और उसका उपयोग करता है, क्योंकि लिखा हुआ है जह नाम तेज पुरुषो पर दब निलम की जान दिन जय भी सह सब्दे पर भागे नाजे नीम के दे नानी, जो जानी है वास्तव में वितरागी है वो क्या विचार करता है कि पर दब निलम
की जान दिन, जैसे पर को पर जान करके और उसे स्वीकार तो करता है पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। उदाहरण देते हैं कि धोबी के यहां से कपड़ा अपना उठा करके ले आया है और पहन करके बाजार में जाता है, इतने में अचानक कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, कहता भैया ये तो कपड़े हमारे हैं, हमने भी धोबी के यहां धुलने दिए थे, अरे भैया तुम्हारे कैसे हैं, तो हमारे नहीं, आप निशान देख लो, तो वो कालर में निशान देखता है तो हाँ ये तो आप ही के हैं, धोबी ने बदल करके मुझे दे दिए, अब क्या करें, अब घर तक जब तक नहीं पहुंचे जब तक उतार दें तो दोनों पकड़ तो पहनी है, पहनी है, लेकिन अब कोई उन कपड़ों को देखता है तो खुशी नहीं होती उसको स्वयं को, क्योंकि हमें अब है नहीं, अब तुरंत के तुरंत उतार के नहीं देख सकते, घर तक तो जाना पड़ेगा, इतनी देर के लिए पहने हैं, इस इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसे जो वैभव प्राप्त होता है अब वो कहना छोड़ दे रहे क्योंकि ठीक है रखे रहो अपने को जो चाहिए नहीं मोक्ष प्राप्त करना है वहां पहुंचने तक अगर ये सब संसार का वैभव मिलता भी है तो उसमें मेरी कोई आकांक्षा नहीं है मुझे
तो दीजिए रत्नत्र निधि
हे मुनीष हे भगवान मैं तो रत्नत्र के अलावा ये सब नहीं चाहता लेकिन देखो तो मुझे जो व्यक्ति रत्नत्र के अलावा कुछ नहीं चाहते वो तो सब कुछ मिलता जीवन उसके जो व्यक्ति जितना पुण्य के फल को छोड़ता है उसके और अधिक पुण्य का अर्जन होता है और संसार में जितनी उसको सुख सुविधा हो सकती है फल और उपलब्ध होगा पर उसमें उसकी आस्था नहीं है ऐसा निकांक्षित अंग को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। मन में अपने ये बात स्पष्ट हो जाए कि हमारी कितनी आकांक्षा है कितनी दौड़ है भैया मिल रहा है उसे स्वीकार करना अलग चीज है नहीं मिल रहा है उसके लिए आकुल विकल होना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। दो दो पैसा को अपना ईमान बेच के उठक बैठक कर रहे दुकान पे और अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो भैया ये अच्छी बात है इतने कहना है अपने को बहुत लेट हो रहा उतनी ऊंचाई वाली चीज पाने के लिए थोड़ा सा अपने जीवन को संभालना पड़ेगा। मैं इस दृष्टि से नहीं कह रहा कि आप उसको ऐसा ले लें करेंगे हमारे ऊपर कोई आक्षेप तो नहीं कर रहे हैं नहीं हम सबका यही भाव हम सबके साथ यही मुश्किल है कि हम चीज को ठीक ठीक नहीं समझ करके अपनी अज्ञानतावश ऐसा कर लेते हैं पर देखो उस संसार के सुखों के लिए कितना प्रयत्न हम कर रहे हैं वो हमें समझना चाहिए अपने आप बिना प्रयत्न के पुण्य के उदर में कोई चीज का हमें संयोग प्राप्त हो जाता है तब भी जिनके पुण्य का उदय है उनको भी सुख और साता हो गए ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कभी भगवान भावना करो तो उसमें ये आता है कि जिनके पुण्य का उदय है उनके भी सुख साता हो गए ऐसा कोई जरूरी नहीं पुण्य के उदय से सामग्री तगड़ी मिल जावे और अगर रोग शोक व्याधि किसी उसी समय पाप के उदय से हो जावे तो दाल रोटी खाओ और भरे हैं सब भोग 56 प्रकार के नहीं खा पा रहे क्यों तो ये तो परमाश्रित है वो ऐसा विचार करता है मिल जाने पर भी और नहीं मिलने पर भी तपन भी अपने भीतर झांक के देखें कि मिलने और नहीं मिलने पर अपनी स्थिति क्या होती अपने भीतर विचार कैसा आता अपनी मान्यता क्या है अपने भीतर उस पर विचार उसमें आस्था नहीं रखना बस इतने ही अपने को काम करना संसार के वैभव में सुख नहीं मानना भैया उससे बड़ा भी सुख है वो वास्तविक सुख मुझे पाना है ये तो बीच के हैं मिले हैं सो ठीक है अब कल ऐसा विचार करके ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है ये सब अपने भीतर अपने आप ये चीजें आनी चाहिए बिना बताए ये चीज आनी चाहिए आती है जिस क्षण तो उन क्षणों को संभाल के रखें कि ये मेरे मन में ऐसा अच्छा श्रेष्ठ विचार आया कि सचमुच जो भी संसार के वैभव हैं वो सब प्राप्त करने योग्य नहीं है मिल जाए तो उनको बिना किसी आस्था के छोड़ के चले जाना तो अपन तो समग्र पुण्यम जोड़ो नहीं जब पूजा करते हैं तब भी यही कहते कि भगवान इस पूजा के द्वारा जो कुछ भी मुझे मिलने वाला है वो सबकी मैं केवल दान दूति अग्नि में सौंपता हूं मुझे सत्य मतलब क्या मुझे तो बड़ी चीज चाहिए आप जो थोड़ा मेरा पकड़ा के हमें उस पूजा का फल मत डालो ना हम इसकी छोटी सी चीज लेकर के क्या करें हमको तो बड़ी चीज चाहिए जो वो सुख चाहिए जैसे अपन बच्चों को बहलाने के लिए कोई चीज दे देते कहते हम बहलने वाले नहीं हैं संसार के सुखों में मुझे मालूम पड़ गया है वो मोक्ष सुख और आपन के चरणों में आके मालूम पड़ा इसलिए अब आप मुझे छोटे मोटे बहाने बना करके और लुटता नहीं देना हम तो आपसे वही लेके लौटेंगे मेरे नचा कछु और ईश रत्नत्र निधि दीजिए और मुझे कारण के कारण सुना और आप मुझे विश्वास हो गया है कि जो मुझे करना है उसमें आप कारण बनेंगे कार्य मेरे भीतर होगा लेकिन मैं आपको निमित्त बनाए बिना नहीं रहूंगा ये हमारी अपनी अपना पुरुषार्थ है हम सच्चे गुरु पुरुषार्थ को निमित्त बनाते हैं वे तो तटस्थ हैं हम ही जो है उनके पास जाकर के उनकी शरण पा करके उनको अपना निमित्त बना के अपना कल्याण कर लेते हैं ये दृष्टि जो है दृष्टि की निर्मलता इतनी आनी चाहिए अपने भीतर। और आज अपन देखते हैं कि और कौन सा गुण आता है, तो जैसे तीसरे नंबर आता है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा, और निर्विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा नहीं करना। मुनि तन मन मन देख घिनावे, इतनी बात कह दी। घृणा सामान्य रूप से तो लिखा है कि अगर कोई वितराग सम्यक दृष्टि है तो पुद्गल पदार्थ जितने भी हैं, दुर्गंध युक्त भी क्यों न हो, उनमें भी वो घृणा नहीं करता है। लेकिन यहां पर तो ये लिखा कि मुनि तन मन मन देख घृणा, इतने ही कर लो। शाबक के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो एक मोक्ष मार्गी। मुनि के अर्थ यहां पर क्या है, सबके साथ में उन स्थान में विचरण करने वाले वे महाव्रती साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, उनके शरीर में होने वाली मलिनता को देख करके और हमारे मन में अगर घृणा आ जाएगी तो हमारा धर्म ही छीन जाएगा, क्योंकि दया धर्म और भैया वृत्ति ही तो श्रावक के लिए है। और अगर वो उन गुणों को न देखते हुए बाह्य शरीर को देखकर घृणा कर लेगा तब तो उसका धर्म ही हट जाएगा। तो उसको धर्म में लगाने के लिए कहते कि मुनि तन मन में देख घृणा। यही मेरी चिकित्सा है कि अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है तो उसके शरीर की मलिनता को देखकर उससे घृणा नहीं करना, वरना उसके निकट ही नहीं पहुंच पाओगे, उससे होने वाला लाभ वंचित रह जाएंगे हम उस लाभ से। श्री कृष्ण के बारे में आता है कि बलदेव और श्री कृष्ण रास्ते से चले जा रहे थे, एक जगह बहुत बदबू आने लगी तो बलदेव ने कहा कि चलो तो भैया यहां से आगे चलो, पर श्री कृष्ण वहीं खड़े हुए। तो बलदेव का आश्चर्य हुआ कि इतनी दुर्गंध आ रही है फिर भी यहां खड़े हुए चलो। तो उन्होंने कहा देखो तो भैया यहां पर क्या हुआ था कि एक कुत्ता मरा पड़ा था, उसमें से बदबू आ रही थी, पर वो स्टेज तक देखे चले जा रहे थे। बलदेव ने कहा यहां ऐसा क्या है, इतनी दुर्गंध आ रही है, तुम चलो। तो बोलते देखो तो उस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, मुझे वो बदबू नहीं आ रही, मैं देख रहा हूं जिस समय की दांत सुंदर हैं उस समय मलिनता की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। ये उदाहरण किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, जो आचार्य समन्त भद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं उसी तरफ इशारा कर रहा है। स्वभाव तो सुतुर काए रत्न त्रय पवित्र ते निर्रूप साधन प्रीति निर्विचिकित्सता। स्वभाव को अशुचन काये, अरे भाई इस शरीर का स्वभाव ही अशुचि है, दुर्गंध। एक बार और पढ़वा दें। स्वभाव तो शुचन काये रत्न त्रय पवित्र ते। कि स्वभाव तो अशुचन काये, ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। देह तरसते रोग अपारम निशुचिन मल झाड़ी। अपने हाथ से अगर अपने फूल की माला पहन ले गए और एक बार पहन के उतार के दूसरे को दे गए वो देह खराब हो। अपने मुंह में कोई चीज रख ले गए और फिर बाद में उगल करके फिर खा गए तो खा सकते नहीं खा सकते, क्यों? देह तरसते हो अपावन, इसको तो स्पर्श करते ही साथ वस्तु अपावन हो गई, चाहे कितनी भी अच्छी ना हो, ऐसा देह का स्वभाव है। अब उससे घृणा करना चाहो तो कर लो, लेकिन उसी देह के भीतर तो देखो कि रत्नत्र पवित्र थे। वो देह जो है अगर उसमें बैठी हुई आत्मा रत्नत्र की आराधना करने में लगी है तो उस रत्नत्र की आराधना करने वाले की देह भी पवित्र हो गई। स्वभाव से तो अपवित्र है लेकिन कोई अगर रत्नत्र से युक्त हो जाए तो फिर उसकी देह भी पवित्र है, वो तो पूज्य हो जाती है। इसलिए अपने यहां पर पंच परमेश्वरी को
आरंभ करने की देव ग्रंथ में कोई नहीं है। आचार्य उपाध्याय की तो देव अभी परम आधारित मंदिर है, औदारिक शरीर है, और अगर उनके चौथे काल में हिंदक संस्थान हो गए तो ऐसा तेरा मेरा शरीर है, क्योंकि वो बाधक नहीं बनता मोक्ष में, मोक्ष उनका भी हो जाता। इसलिए देव पर दृष्टि नहीं रखना। जब श्रीमद रायचंद अपने मोक्षों के साथ चले जाते थे रास्ते में, तो उन्होंने मोक्षों से पूछा कि क्यों एक चीज बताओगे? सबने कहा पूछे भगवान क्या चीज बताना है, तो कहा कि जैसे कोई व्यक्ति मटका रखे हुए है सिर पर जिसमें छाछ भरी है, और एक हाथ में लिए है बगरी छोटा सा मटका जिसमें घी है, अगर उसे धक्का लगे तो वो भला आदमी किस चीज को बचाएगा? तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, वो तो छाछ के गले को गिर जाने देगा पर घी का घड़ा बचा लेगा। तो बोलते इसी तरह ध्यान रखना, जब उस शरीर पर कोई आपत्ति आवे तो किसने बचाना? अब यह कह रहे क्या आत्मा सही है, जब ऐसी मुश्किल आवे तब देखने कि किसको बचाना है, बचाते तो अपन देते हैं शरीर को, उस समय विचार करना कि जैसे ही को उधर बचाते हैं ऐसे ही तो मेरा रत्न प्रय है, उसकी सुरक्षा करना है, शरीर जाता है तो चला जाए। इसी तरह रत्नत्रयधारी के रत्नत्रय रूपी गुणों को देखना, उसके शरीर को नहीं देखना। दूसरी लाइन में कहते मूर्ति चिकित्सा गुण प्रीति मता, अगर उसकी गुणों में प्रीति है तो उसके मूर्ति चिकित्सा अपने आप पल जाएगी। हम बाह्य देव को देख करके, सुंदर और असुंदर देख करके राग और द्वेष कर लेते हैं, उसकी तरफ से हमारा ध्यान दूसरी तरफ ले जा रहे हैं आचार्य भगवंत कि शरीर का स्वभाव तो हम पहले से बता दे रहे हैं कि वो तो अपवित्र है ही, उसकी तरफ मत देखो। हमें तो देखना है उसमें जो गुण भरे हुए हैं, जो रत्नत्रय है, अगर वो हम देखते हैं तो वो तो पवित्र है, उसकी अपेक्षा से ही, उन गुणों की अपेक्षा से हम उसे पूज माने और घृणा न करें। कितनी आसानी से हमारे लिए, बहुत कई बार जब पढ़ता हूं स्वयं भी और समझता हूं तो लगता है कि कितना उपकार है पूर्वाचार्यों का हमारे ऊपर, कैसे उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे कल्याण के लिए बातें लिख दी। अब इतना ही है कि अपना बहुत पुण्य चाहिए कि अपन उन चीजों को ठीक ठीक समझ सके, पढ़ सके। आज तो व्यक्ति को खुद अपने हाथ से पुस्तक खरीद के पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, कहीं पर पुस्तकें मिल जाए तो हर्ष नहीं होता देख करके, शास्त्र भंडार को देख करके हर्ष नहीं होता कि अरे वाह इतना समृद्ध है हमारा हमारा ग्रंथ, हमारे इतने ग्रंथ हैं हमारे पास, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ समय निकाल करके स्वाध्याय करना ही चाहिए। स्वाध्याय नहीं कर पाते भैया तो जो स्वाध्याय करते उनको देव, स्वाध्याय करने के लिए सुबह भी अपने हाथ से नहीं छूटता। अपन नहीं पढ़ पा रहे किताब, ऐसे बहुत कम लोग देखने में आए मुझे तो, कि जो खुद नहीं पढ़ पाते वो कहते कि भैया अच्छे ग्रंथ हम नहीं पढ़ पाते, आप पढ़ते हो आप ले लो हम आपको खरीद के दे देते हैं। तब आएगा ये ज्ञान, ये छोटी छोटी बातें भी अगर जीवन में आ जाए कि हमें रत्न, कभी भी सामान्य व्यक्ति का भी ले लो, किसी भी व्यक्ति के हमें गुण देखना है और गुण देख करके उसके प्रति, गुणों के प्रति प्रीति करना है, उसके बाह्य रूप को देखकर उससे घृणा नहीं करना, उसकी बुराइयों को देखकर उससे घृणा नहीं करना। इसमें सदा सुक्रांति जी ने टीका लिखी, उसमें बड़ी विशेष बात लिखी कि बाह्य परिणामों के निमित्त से अपने मन को मन नहीं करना, यही तो मुर्गी चिकित्सा है। लेकिन बाह्य निमित्त पा करके हम अपने मन को मनन कर लेते हैं। उसमें लिखते हैं वो कि दीनहीन और दरिद्री को देख करके भी मन में ज्ञानी नहीं लाना, ये विचार करना कि अरे कौन से कोई पूर्व अर्जित पाप का फल भी भोग रहा है, दीनहीन गरीब है, उस पर उससे घृणा नहीं करना। और कहते कि अगर कोई निंदनीय आचरण करता है तो उसको देखकर भी अपना मन गंदा नहीं करना, वो निंदा आचरण कर रहा है उसकी निंदा मत लग जाना आप, नहीं तो उसको तो निंदा आचरण कर ही रहा, आप निंदा करके अपना मन क्यों कलुषित कर रहे हो? ये मुर्गी चिकित्सा का प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये रोज मर्जा के जीवन में समग्र चिकित्सा अंग से भ्रमण करने वाली चीजें हैं। ये पढ़ करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उद्गल प्रत्ययों से होने वाली दुर्गंध से घृणा नहीं करना, ये तो लौकिक राग सम्यक दृष्टि को ही संभव है, क्योंकि दुर्गंध से तो हर एक को घृणा होती कहते, लेकिन किसी दूसरे के दूर दूर देख करके और अपना मन खराब नहीं करना। वायुनिमित्त अगर हमें घृणा से भी मिले तब भी घृणा नहीं करना, और सबसे बड़ी चीज तो दूसरे का निंदा आचरण देख करके भी अपना मन खराब नहीं। बहुत कठिन बात,
अपना निंदा आचरण स्वयं दिखाई नहीं पड़ता, दूसरे का निंदा आचरण दिखाई पड़ता है। एक जगह में पढ़ता था तो लिखा कि जो दूसरे की बुराई देखता है ये तो निश्चित हो गया कि वो भला आदमी नहीं है। वो दूसरा बुरा है ये तो निश्चित बाद में करेंगे अपन, क्योंकि ये कह रहा है कि दूसरा बुरा है वो निश्चित बाद में कर लेंगे, पर ये तो निश्चित हो गया कि कहने वाला भला आदमी बनेंगे। यह दृष्टिकोण यहां पर है। मैं आपसे फिर कहूं, दृष्टि की निर्मलता ही जीवन को संभाल सकती है, और कोई यह संसार में संभालने वाला नहीं है। हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से अपनी दृष्टि को संभाल ले गए, अपनी दृष्टि को निर्मल बना ले गए तो इस संसार से हम आसानी से पार हो सकते हैं। ये दृष्टि का ही खेल है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि वहीं के वहीं हम अच्छाई भी देख सकते हैं और वहीं पर बुराई भी हम देख सकते हैं। हमें क्या देखना है ये हमारी आंख पर निर्भर करता है। संसार में तो अच्छा और बुरा दोनों है, पर देखने योग क्या है ये मुझे देखना है। और अगर हम गुणों की तरफ देखते हैं तो गुणों से तो प्रीति ही की जा सकती है, उनसे तो घृणा नहीं की जा सकती है। और देखने की दृष्टि अगर हम बदल दे गए, जैसे कि एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति खड़ा है झील के किनारे तो क्या देख रहा है, वो देखता है कि ऊपर उभर हुआ चांद और बिल्कुल झील में पड़ा दिखाई पड़ रहा है। उसका जो अक्स आ रहा है झील में तो उसको चांद दिखाई पड़ रहा, और एक कमाल आदमी वहीं खड़ा तो वो क्या देख रहा कि मैं टूटे ऊटे जूता चप्पल बहुत बड़े में अगर दिन कर आती तो अच्छी पैसा कमाएंगे। उसको झील में पड़े टूटे जूते चप्पल कलश कर देगा है, और एक व्यक्ति को उसमें उसकी जो परछाई है चंद्रमा की वो दिखाई पड़ रही है, उसको खुश हो रहा। आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप वहीं क्या देख लेंगे उसी चीज में। तो कहते हैं कि उस शरीर में आप शरीर को देखोगे तो अपवित्रता दिखाई देगी,
और शरीर में जो आत्मा देखी उसके गुणों को देखोगे तो गुणों के प्रति
तो प्रीति ही होगी, घृणा का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे जो है दृष्टि की निर्मलता तीसरे गुण से अपने भीतर और आ जाती है। कितनी बातें हो गई, हम मिशन को निर्भर हो गए, निकांक्षित हो गए, और हमारे भीतर अब ऐसा दृष्टि में निर्मलता आ गई कि दूसरे की बुराई नहीं दिखती, उसके जो जो गुण हैं वो सब दिखते हैं, और उन गुणों के प्रति आभार होता है, उन गुणों के प्रति प्रीति जागती है। और विशेष रूप से जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे, देखो भैया त्यागी व्यक्ति का सम्मान तो जरूर करना चाहिए, उसके गुणों का सम्मान है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं। त्यागी व्यक्ति को भी मिल जाए उसका अनुभव हम अति वैसे तो जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है उसको देखकर तो हर्ष होना चाहिए, और फिर जिसने सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक थोड़े बहुत देशभक्त दे लिए उसको देखकर तो और होना चाहिए, और जो महाभक्त को धारण करता है उसको देख करके तो वैसे ही बनने की आकांक्षा मन के भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। इसमें किसी का क्या लगता है, कुछ ज्यादा खर्चा थोड़ी इसमें, ये तो बहुत हिसाब सस्ता हिसाब है। इसमें भावना करने में क्या दिक्कत है, हर्षित होने में क्या दिक्कत है, दूसरे के गुण देख करके ईर्ष्या कर लेते हैं उससे तो बेहतर है कि दूसरे के गुण देख करके हर्षित हो गए, उससे तो अपना लाभ ही लाभ है। अगर देशभक्ति भी हो भागते और हानि लाभ का भी सौदा हो गए तो हानि का कौन करेगा, चाहे लाभ का सौदा करेंगे। और लाभ इसी में है कि हम तो हमेशा दूसरे के एक गुण भी दिखाई देता है। जैसे ने लिखा कि कोई बहुत बड़ा भवन हो गए चाहे छोटी सी कुटिया हो गए, आने जाने का एक दरवाजा तो सबके पास है। जैसे भवन में और झोपड़ी में आने जाने का एक दरवाजा जरूर होता है, ऐसे ही हर पतित से पतित आत्मा के भीतर भी एक गुण को मिल ही जाएगा। हमारा दृष्टिकोण उस गुण को देखने का होना चाहिए, बाकी तो ठीक है कि सौ दोष यानी हजार दोष भरे हुए हमें क्या लेना देना उनसे, वो जो एक गुण है वो क्वालिटी हम देख लें,
वो अपने जीवन में डेवलप करें। हमें अपने जीवन को संभालना है तो यह आवश्यक। और फिर एक और अपन आगे बढ़ते हैं कि अमूल दृष्टि, एक और हमारे भीतर गुण कैसे आ जाता है कि जब हमने एक रास्ता अपना निश्चित चुन लिया है तब और बहुत सारे रास्ते हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। चौराहे पर खड़े थे और हमें जाना था, मान लो इधर आपकी क्या पड़ता है, गुरुवाई पड़ता है, तो हमें जाना है गुरुवाई। अब तो कहे कि देखो गुरुवाई वाले रास्ते पर तो लोग पड़ते हैं और इसमें जो है वो देखो ये जो रास्ता सागर की तरफ जाता है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत साफ सुथरा है, तो आप इस पर चले जाओ तो हम क्या करेंगे। ये भैया वो तो बड़ी वाली है तो गुरुवाई जाना, चाहे कैसा हो जाए गड्ढा वाले हो जाए खराब। जब इतना अपन संसार के मामले में ध्यान रखते हैं तो इसी तरह मोक्ष के मार्ग में कि भैया हमने तो ये रास्ता चुना है, सच्चे गुरु शास्त्र के द्वारा बताया जो रास्ता चुना है, अब और होंगे बहुत सारे 363 मत मतान पर हैं संसार में, हमें उसे क्या लेना देना। अपने ज्ञान भरे हम तो चुपचाप चले जाएंगे, जैसे अपन नहीं कहते कि तुम आदि आदि हो देखिए अपनी जो गरज ही लेकर। इसी तरह अमूर दृष्टि वाला, अमूर्ता का अर्थ है विवेकवान, मूल मतलब अविवेक, सुपरस्टिशंस कहलाते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे अंधानुकरण जिसको अपन कह देते हैं, अज्ञानता वश अपन बहुत सारी चीजों में धर्म मान लेते हैं, वो सब मूर्ता है और उससे रहे जो दृष्टि है वो अमूर दृष्टि है। अमूर दृष्टि का स्वरूप आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, कापतस्ते प्रसन्मति असंप्रतीर कीर्ति रमणा दृष्टिरुच्यते। कापथे पति दुखा नाम कापथस्ते प्रसम्मति असंप्रति अनुकीर्ति अमूरा दृष्टि उच्यते। अमूर दृष्टि उसे किसको कहेंगे, जो कि यह दृष्टि कापथे जो गलत रास्ता है, या कि कापथस्ते अति जो गलत रास्ते पर चल रही है उस पर भी दोनों के प्रति असंप्रति और अनुकीर्ति, उन दोनों के प्रति मन से वचन से और शरीर से कोई भी ना सम्मति देंगे, ना उसका समर्थन करेंगे, ना उसका कीर्तन करेंगे। ये बात बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन इतनी असंभव भी नहीं है कि हम नहीं कर सकें। हम जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है या ये रास्ता ही गलत है, हम स्वयं उस रास्ते पर भले ही चलते हैं लेकिन कई बार उस गलत का हम समर्थन तो कर देते हैं। कहते हैं मन मन उसका समर्थन भी नहीं करना और न ही वचन के द्वारा और शरीर के द्वारा उसकी कोई अनुपकीर्ति, अर्थात उसके लिए वचन के द्वारा कोई सम्मान का या प्रशंसा का शब्द नहीं कहना, तटस्थ रह जाना। अभिनेशु माध्यस्थ भावन, जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं कुमार्ग पर चलते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव, निंदा भी नहीं प्रशंसा भी नहीं, ये दृष्टिकोण है। यहां पर हम अपने रास्ते चले जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पर जाने वालों की न निंदा करना है न प्रशंसा करना, बस इतनी सी बात सीखने की है। अक्सर होता यह है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसे श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सबकी निंदा करने में अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। यहां हमें इशारा कर रहे हैं कि भैया आपने जो रास्ता सच्चे गुरु शास्त्र के द्वारा बताया प्राप्त कर लिया है, उसके अलावा अन्य रास्तों पर ये कि अन्य रास्तों के प्रति अपने मन में वचन में शरीर से न उनकी दोनों अलग अलग हैं, असम्मति तो होती मन से और असंप्रति होती है शरीर से और अनुकीर्ति होती वचन से, इसलिए तीनों सब अलग अलग दे दी है, असम्मति असंप्रति और अनुकीर्ति। मन मन उनकी भीतर भीतर यहां ठीक है, साधु बात नहीं कह देना भीतर भीतर और वचन से ही लोग कह देना, और शरीर से कई बार अपन वचन से भी नहीं कहते और मन से भी नहीं कहते, और शरीर से तो मदद हाथ जो है हाथ कर लो कोई बात नहीं, वचन से भले नहीं कहा। यह बहुत सावधानी की आवश्यकता है, गलत रास्ते पर अब
अपना बेटा भी क्यों ना गलत रास्ते पर चल रहा हो, उसका मन ही मन समर्थन या वचन से उसका हां या फिर शरीर से कभी भी नहीं करना। ये अपने आप दृष्टि में ऐसी निर्मलता आ जानी चाहिए भाई। लेकिन है बहुत कठिन, आपसे कहते रहो सुपरस्टिशंस होना बहुत ढेर चाल बहुत आसान है। चार आदमी जो हम तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाने का मन होता, एक अकेला ठीक रास्ते पर भी चल रहा हो तो भी उसका साथ देने का मन नहीं होता। ये संसार ऐसा है, ढेर चाल समझते। एक गुरु जी थे तो वो स्कूल में पढ़ाते, तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि बच्चों ये बताओ, एक बाड़े में 10 भेड़े हैं और उनमें से कूद करके एक भेड़ बाहर निकल जाए तो कितनी बची? तो कोई भी कह देगा कि मैं बची। लेकिन वो जो लड़का था जिससे पूछ रहे थे वो तो भेड़ चढ़ाता था, तो उसने कहा गुरु जी एक भी नहीं बची उसमें। मैं कहा ये भी कोई तुम्हें हम इतने दिन हो गए गणित पढ़ाते पढ़ाते, फिर से सुनो, 10 गायें हैं 10 भेड़े हैं उसमें से एक चली गई कितनी बची? तुमने कहा एक ही नहीं बची। तो गुरु जी ने कहा कि तुमको हम गणित में फेल कर देंगे। तो उसने कहा गुरु जी गणित में भले फेल कर दो, गणित की आप जानो, भेड़ों की हम जानते हैं, तो एक निकली कौन तो एक उनके दर्शन निकल जाएंगे। ये कहलाती भेड़ चाल, वो एक दूसरे को फॉलो अप करती है, वो तो नहीं देखती कि आगे कैसा है। एक गिरे भी गड्ढे में तो उसके पीछे वाले कोई समझेगी नहीं कि एक को गिरते देखते अपन समझेगा, वो सब उसमें जाकर के गिर गए। ये कहलाती है अज्ञानता, ये कहलाती है मूर्खता। जब हम वस्तु स्थिति का ठीक ठीक निर्णय किए बिना और अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए पहले भी स्वीकार कर लेते हैं और अपने आर्गुमेंट तर्क देकर के उससे सही भी साबित कर लेते हैं, कहते ये सब मूर्खता है। अमूर्त दृष्टि तो सच्चे वेद शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग के अलावा अन्य मार्गों के प्रति कोई उत्सुकता नहीं है, न मन से न वचन से न शरीर से। बहुत सीधा सीधा सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण अपन का बने यही भावना आनी चाहिए। फिर अपन इस पर बैठेंगे और थोड़ी बात करेंगे अमूर्त दृष्टि कैसे सुपरस्टिशन और कौन कौन सी बातें हैं जो अपन कई बार मिस कर जाते हैं और कई बार सहजता से अपने संस्कार वश कई चीजों का व्यर्थ समर्थन करके और पाप कमा लेते हैं। हमें जल्दी से किसी भी बुरे मार्ग का समर्थन तो करना ही नहीं चाहिए जिसे हम बुरा कहते हैं। मन में भले सब लोग कर रहे हो लेकिन अपने मन को तो अपन संभाल सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी भी आपसे पिछले दिनों से लगातार कह रहा हूं, खाने पीने की चीजों के बारे में भी बहुत कुछ जो है अपन बिना उसके जो है और स्वीकार करते चले जा रहे हैं। सब चीजों में देखना पड़ेगा भाई, अगर आपके अंदर दृष्टिकोण आपका साफ सुथरा हो गया है तो पूरे जीवन का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को जान करके और अपने जीवन को हम संभालें इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर।